नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जगत चंदौली
और मैं प्रेमा नेगी। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है
नई दिशा।
अच्छा प्रेमा, जानती हो मेरा दिल आज क्या कर रहा है?
क्या?
मेरा दिल आज हमारे श्रोताओं को एक कहानी सुनाने का कर रहा है।
कहानी?
हाँ, मैंने बचपन में स्कूल में पढ़ी थी, तीसरी क्लास में, जिसमें बताया गया था कि एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन कई सारी लाठियों को अगर एक साथ मिला लिया जाए ना, तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि उसे तोड़ पाए।
कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
बिल्कुल सही कहा जगत तुमने, और ये कहानी तो मैंने भी सुन रखी है, और मुझे लगता है मैंने क्या, लगभग हमारे सभी श्रोताओं ने ये कहानी पढ़ भी रखी होगी और सुन भी रखी होगी। और जगत, जहाँ तक मुझे याद है, इस कहानी का एक मोरल था, वो क्या कहते हैं ना, हाँ, एकता में बल है।
अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना, अब तो हमें।
बिल्कुल, एकता में बल है, यानी कि अगर अलग अलग बिखरी हुई ताकत एक जगह इकट्ठी हो जाए तो उसे कोई हरा नहीं सकता।
बिल्कुल
ठीक उसी तरह अगर हम लोग भी अपनी बिखरी हुई ताकत को, अपनी अलग अलग कोशिशों को मिलाकर एक कर लें, तो HIV की जंग भी जीती जा सकती है,
और उसके लिए हमें एक होना होगा।
बिल्कुल।
लेकिन फिर भी जगत, ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो सकता है, थोड़ा विस्तार से बताओगे?
हाँ हाँ, जरूर बताऊंगा, लेकिन भाई इसके लिए तुम्हें और हमारे श्रोताओं को मेरे साथ बढ़ाना होगा एक कदम, यानी कि हमारे सेगमेंट जानो अनजाने की तरफ। दोस्तों, आपको याद होगा जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो अक्सर ग्रुप बनाया करते थे, और उस ग्रुप में हम दोस्तों के साथ हंसी मजाक किया करते थे, कभी गम बांटते थे तो कभी खुशियां। सचमुच कितना अच्छा लगता था, है ना?
बिल्कुल। और तो और जगत, अकेले व्यक्ति को भले ही कोई परेशान कर सकता हो, लेकिन ग्रुप से पंगा लेने की हिम्मत इसी में भी नहीं होती थी।
तो दोस्तों, यही तो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपसे बांटना चाहता हूँ कि हमारे समाज में ऐसे कई सारे लोग हैं जो HIV पॉजिटिव लोगों की मदद करना तो चाहते हैं, उनका साथ भी देना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ अकेले होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते। तो हमारे उन दोस्तों को हमारी यही सलाह है कि वो ये काम किसी ग्रुप में शामिल होकर बखूबी कर सकते हैं। बस शर्त इतनी सी है कि वो ग्रुप उन लोगों का हो जो HIV के खिलाफ इस जंग में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चल सकें।
और दोस्तों, HIV पॉजिटिव लोग भी किसी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, या फिर वो भी मिलकर अपने ग्रुप का निर्माण कर सकते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा भी कर सकते हैं।
और दोस्तों, ऐसे कई सारे ग्रुप हमारे देश में चल रहे हैं, तो आप उनमें से चाहे तो किसी ग्रुप का हिस्सा बन जाइए, या फिर अपने नए ग्रुप की शुरुआत करके दूसरे लोगों को उसका हिस्सा बनाइए और दीजिए HIV को मुंह तोड़ जवाब।
और अगर आप इस बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं, तो आप बेझिझक होकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें खत लिख सकते हैं, और खत लिखने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम नई दिशा, 177 बेसमेंट, अशोका इंक्लेव 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद 121003, हरियाणा।
इसके अलावा आप हमें ईमेल के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है naydisha@gmail.com।
और दोस्तों, अब समय हो गया है पिछले हफ्ते पूछे गए सवाल का जवाब देने का।
तो दोस्तों, पिछले हफ्ते का हमारा सवाल था, किसी विशेष जानवर के संपर्क में आने से क्या आपको HIV हो सकता है?
और इसका सही जवाब है ऑप्शन B, यानी कि नहीं।
और दोस्तों, एपिसोड 39 का सही जवाब देकर हमारी आज की भेजा फ्राई कैब जीतने वाले भाग्यशाली विजेता का नाम है
हरीश कुमार गुड़गांव से। आपको इनाम बहुत बहुत मुबारक हो।
और दोस्तों अब हमारा आज का सवाल।
और आज का सवाल है, ऐसा कौन सा उपाय है जो गर्भ, एचआईवी और यौन रोगों के संक्रमण तीनों को रोकने में प्रभावशाली है। अपना सवाल एक बार फिर से सुनिए, ऐसा कौन सा उपाय है जो गर्भ, एचआईवी और यौन रोगों के संक्रमण तीनों को रोकने में प्रभावशाली है। और आपके ऑप्शंस हैं, ए गर्भ निरोधक गोलियां, बी लिंग को स्खलन से पहले योनि से निकाल लेना, सी कॉन्डोम और डी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव या आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियां। अपने ऑप्शंस एक बार फिर से सुनिए, ए गर्भ निरोधक गोलियां, बी लिंग को स्खलन से पहले योनि से निकाल लेना, सी कॉन्डोम और डी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव या आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियां।
तो दोस्तों अगर आपको जवाब मालूम है तो सोच क्या रहे हैं, फटाफट अपना मोबाइल फोन उठाइए, टाइप कीजिए ND43 भेजा फ्राई स्पेस और अपना जवाब ए बी सी या डी और लिखकर हमें भेज दीजिए 9717678223 पर।
और अब वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट आमने सामने का।
दोस्तों आमने सामने में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रंजना जी और प्रदीप जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। अच्छा रंजना जी और प्रदीप जी, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप अपना परिचय दीजिए।
मेरा नाम प्रदीप है और मैं सीनियर टेक्नीशियन हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और पिछले 5 साल से मैं एचआईवी पॉजिटिव हूँ। मैं किसी एआरटी पे नहीं हूँ और मैं दिल्ली नेटवर्क ऑफ पॉजिटिव पीपल से जुड़ा हुआ हूँ। और जैसे कि मुझे मेरा स्टेटस पता चला था कि मैं एचआईवी पॉजिटिव हूँ, उसके बाद मैं डीएनपी गया। डीएनपी के माध्यम से मुझे काफ़ी अवेयरनेस मिली और मैं आज पूरे समाज को अवेयरनेस देता हूँ कि एचआईवी पॉजिटिव पीपल्स या एचआईवी वायरस कोई चीज़ नहीं है। समाज में जिस तरह मनुष्य जीते हैं सभी जी रहे हैं, वैसे ही मैं जी रहा हूँ।
जी रंजना जी, आप?
मेरा नाम रंजना है और मैं पिछले 7-8 साल से एचआईवी पॉजिटिव हूँ और मैं दवाइयों के साथ जी रही हूँ।
जी अच्छा ये बताइए कि एचआईवी पॉजिटिव नेटवर्क से जुड़ने के बाद आप लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आए?
जिस टाइम मेरा स्टेटस पता चला था मुझे कि मैं एचआईवी पॉजिटिव हो गया हूँ, उस वक्त मैं अपने होशो हवास में नहीं था और मैं काफी डिस्टर्ब रहता था। एनजीओ के माध्यम से जब मैं एनजीओ में गया, डीएनपी में गया, वहां पता चला कि मेरे जैसे काफी लोग एचआईवी पॉजिटिव हैं, उनको देखा मैंने और अपने आप को संभाला। काफी मेरे को हौसला मिला कि मैं ही जीवन में अकेला नहीं हूँ, एचआईवी के साथ जी रहा हूँ। मेरे साथ को काफी मेरे लोग, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं और मुझे काफी अच्छी मदद मिली एनजीओ से। अगर एनजीओ नहीं होता तो आज हम जो देश में इन्फेक्टेड लोग हैं हमें काफी मायूस होना पड़ता। तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ सबसे कि हम बड़े अच्छी तरह से जी रहे हैं और बढ़िया फर्स्ट क्लास अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं।
अच्छा रंजन जी आप ये बताइए कि आपके जीवन में क्या बदलाव आया?
मैं जो डीएनपी प्लस नेटवर्क से, तो मैं थोड़ी देर से जुड़ी। सबसे पहले मैं नास फाउंडेशन से जुड़ी क्योंकि मेरे हस्बैंड पहले एक्सपायर हो चुके थे और मेरे साथ में मेरी बेटी थी, 2 साल की थी, बहुत छोटी थी वो। और मेरे ससुराल में बहुत ज़्यादा मेरे साथ में मतलब बहुत परेशान करते थे मेरे को। तब मैंने परेशानी में नास फाउंडेशन में फ़ोन किया था, तो वहाँ से काउंसलर मेरे घर पर आए थे, उन्होंने मुझसे बातचीत की, मेरा हौसला बढ़ाया उनकी बातों से। मेरा जो एक हुनर मेरा दबा हुआ था क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, उसके बाद भी मैं एकदम जीरो हो गई थी, लेकिन उनकी बातों से मुझे हौसला मिला और मैंने धीरे धीरे अपना ट्यूशंस वगैरह लेना शुरू किया अपना घर का खर्चा निकालने के लिए। तो बहुत मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा मेरे जीवन में बदलाव आया। उसके बाद में मैं अपने मतलब इतना मेरे को आत्मविश्वास हो गया कि मैं अपने बच्चे को खुद ही पाल लूँगी। लेकिन उसके बाद में फिर नाज की सपोर्ट ग्रुप मीटिंग होती है, मैं वहाँ पर उन्होंने मुझे बुलाया, मैं वहाँ पर गई तो फिर जयप्रकाश नाम के व्यक्ति से मेरी मुलाकात करवाई, तो फिर हमने मुलाकात के बाद में बातचीत हुई तो हमें लगा कि हम लोग लाइफ मिलकर साथ में चला सकते हैं। तो फिर मैंने शादी करने का फैसला भी कर लिया, तो मैंने उनके सामने ये सवाल रखा कि मेरी बेटी के लिए अच्छे पिता होने चाहिए, तो उन्होंने हाँ किया और उनके साथ में फिर हमने दूसरी शादी कर ली और उसके बाद में मतलब लाइफ अच्छी ही होती चली गई एनजीओ से जुड़ने के बाद में।
तो इसका मतलब आपका जो हौसला टूट चुका था वो आपने संभाला
संभाला
और फिर से अपनी जिंदगी जो है वो पटरी पर आई।
हाँ जी। मेरी तो बिल्कुल जिंदगी बदल गई।
अच्छा रंजना जी और प्रदीप जी, हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि ये नेटवर्क किस तरह से काम करता है और किस तरह की फैसिलिटीज ये प्रोवाइड कराता है।
जैसे कि दिल्ली नेटवर्क ऑफ पॉजिटिव पीपल्स है, ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे काम करता है। जो हम पॉजिटिव व्यक्ति हैं, हमारे ट्रीटमेंट के ऊपर क्या हमें कौन सा ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे फर्स्ट लाइन चल रहा है आजकल, सेकंड लाइन ट्रीटमेंट है। सबसे पहले मैं अपने श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि 7 ट्रीटमेंट है हमारे ऊपर। फर्स्ट लाइन में जेडोविडिन, लेमोविडिन, इस्टुविडिन और नेफ्रापिन चलता है। आजकल नाकों की नई गाइडलाइन आई है, जैसे कि अगर हमारा CD4 200 है, पहले 200 है, अब 300 पे भी डॉक्टर हमारी ARV स्टार्ट कर सकता है।
मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, अभी पिछले दिनों DNP+ ने ही, दिल्ली पॉजिटिव नेटवर्क ने पब्लिक हियरिंग की थी। उसके अंदर जो भी शिकायत वगैरह कुछ होता है इस तरह का, तो वो एक तरह से एडवोकेसी होती है, उसमें काफी मुद्दे उठाए जाते हैं ऐसी बातों पर।
अच्छा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि कोई भी HIV पॉजिटिव पर्सन कैसे इस नेटवर्क को ज्वाइन कर सकता है, क्या आप हमारे श्रोताओं को कोई नंबर या कोई पता बताएंगे?
कोई भी व्यक्ति अगर जो HIV पॉजिटिव है तो वो दिल्ली नेटवर्क ऑफ पॉजिटिव पीपल्स ज्वाइन कर सकता है, वर्ल्ड विजन ज्वाइन कर सकता है। जैसे मैंने बताया लव लाइफ सोसाइटी हमारे दिल्ली में, हम दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली में काफी NGO काम कर रहे हैं इस फील्ड में। और आप कहीं भी जब हमारे NGO ने अपने एज ए काउंसलर नियुक्त कर रखे हैं प्रत्येक ART सेंटर में, अपने आउटरीच वर्कर नियुक्त कर रखे हैं। हमारे आउटरीच वर्कर का यही काम है कि जो नए क्लाइंट हमारे ART सेंटर में आते हैं उनकी संपूर्ण रूप से मदद कीजिए और हमारे NGO तक उनको लाइए, और हम उन लोगों की संपूर्ण रूप से मदद करते हैं जो उनका भय उसको संपूर्ण रूप से उसके हृदय से निकालकर संपूर्ण रूप से वो अपना जीवन जीता है।
जी बिल्कुल। अच्छा रंजना जी, अगर मैं ये कहूँ कि गागर में सागर वाली बात, दो शब्दों में आप किस तरह से हमारे श्रोताओं को संदेश देना चाहेंगी, या कुछ इसमें जो उन्होंने बताया प्रदीप जी ने, इसमें क्या ऐड करना चाहेंगी?
मैं ये कहना चाहूंगी कि क्योंकि ज्यादातर जो औरतें निकल कर आती हैं पॉजिटिव, वो ज्यादातर विडो हो जाती हैं जब उनको पता चलता है कि वो HIV पॉजिटिव है, तो वो विडो हो जाती हैं। तो वो अपने आप को ये ना समझे कि मैं विधवा हो गई हूँ या HIV पॉजिटिव हो गई हूँ तो मेरा जीवन खत्म हो गया है, मेरी लाइफ खत्म हो गई है। लाइफ आगे अच्छे तरीके से जी जा सकती है, उसको अपने जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है, थोड़ा जीने का नजरिया चेंज करके, उसको देखने का नजरिया बदल कर।
बिल्कुल सही कहा आपने रंजना जी। बस मैं दो शब्दों में अपने श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार गिर करो मुसाफिर, ओकरे इंसान को चलना सिखाती हैं।
और आइए दोस्तों, अब हम जवाब देते हैं उन बातों का जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, यानी कि अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट आपकी बात की।
तो दोस्तों, आज जो खत हम पढ़ने वाले हैं वो हमें मिला है उत्तराखंड से, जिसे भेजा है पी कुमार जी ने, और वो लिखते हैं कि मैं 26 साल का हूँ और मेरे लिंग पर हल्के हल्के दाने निकल आए हैं, मैं कौन सी दवा लूं? कुमार जी, अगर आपके लिंग पर दाने निकल आए हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, हो सकता है कि ये किसी तरह का यौन रोग हो, और अगर आप यौन रोग में किसी भी तरह की लापरवाही बरतेंगे तो इसके फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको अपने आप कोई दवा ना लेते हुए, मेरा मतलब अपनी मर्जी से कोई दवाई ना लेते हुए, डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए।
और दूसरा सवाल है कि क्या लिंग को सक करने से भी STI फैलता है, और STI की फुल फॉर्म क्या है? हम आपको बता दें कि लिंग को सक करना ओरल सेक्स या मुख मैथुन कहलाता है, और ओरल सेक्स करते हुए कॉन्डोम का यूज करना बहुत जरूरी है। बिना कॉन्डोम के ओरल सेक्स करने से STI और HIV दोनों का ही खतरा होता है, और अगर लिंग पर या फिर मुंह पर किसी तरह के घाव हों तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमारी यही सलाह है कि आप कॉन्डोम का प्रयोग करते हुए ही ओरल सेक्स करें, और STI की फुल फॉर्म है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन।
तो दोस्तों, अगर आप हमसे HIV के संबंध में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप अपना सवाल हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं।
और इसके अलावा अगर कार्यक्रम के संबंध में आप कोई राय अथवा सुझाव हमें भेजना चाहते हैं तो वो भी आप हमें चिट्ठी और ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। चिट्ठी भेजने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम नई दिशा, 177 बेसमेंट अशोका इंक्लेव 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद 121003, हरियाणा।
हमारा ईमेल आईडी है नई दिशा NAYDISHAA@gmail.com।
और दोस्तों, अब समय हो चुका है आपके मनोरंजन का, यानी कि हमारे रेडियो धारावाहिक जीवन की राह का।
दोस्तों, पिछले हफ्ते के एपिसोड में आपने सुना शीला और सुमन के बीच के रिश्ते सुधर रहे हैं। सुमन अपनी माँ शीला का पूरा ख्याल रखती है, जिससे राजन काफी खुश होता है। शीला को लगता है उन्हें अपने HIV पॉजिटिव होने के बाद सुमन को बता देनी चाहिए,
लेकिन राजन शीला से मना कर देता है और वादा करता है कि सही वक्त आने पर वो खुद सुमन को ये बात बता देगा। आइए अब सुनते हैं आगे की कहानी।
अरे सुमन, आज गधेरे पर तू पानी लेने आई है?
हाँ रविता, वो दरअसल माँ की तबीयत खराब है ना, इसलिए।
चलो अच्छी बात है, तूने अपनी माँ को माँ तो माना।
हाँ रविता, मैं गलत थी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है।
अच्छा है कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अच्छा सुमन, मैं चलती हूँ, माँ घर पर इंतजार कर रही होगी।
हाँ हाँ ठीक है।
और हाँ, आंटी का ठीक से ख्याल रखना, मेरा नमस्ते कहना।
हाँ हाँ कह दूंगी।
रबीता, रबीता।
विनोद,
कहाँ से आ रही हो?
मैं तो पानी लेकर आ रही हूँ, लेकिन तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो?
मैं वो शिक्षा केंद्र जा रहा हूँ, अब मैं भी राजन सर के साथ काम करूँगा।
ये तो बहुत अच्छी बात है।
हाँ रबीता, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी।
क्या?
यहाँ रास्ते में नहीं, कहीं और बैठ कर बात करें।
विनोद, मुझे घर के लिए देर हो रही है, माँ घर पर इंतजार कर रही होगी।
बस थोड़ी देर के लिए रबीता, प्लीज।
बोलो क्या कहना है?
रबीता, मैं जब शहर में कॉलेज में पढ़ने के लिए गया था, तो वहाँ कुछ गलत लोगों की संगत में पड़ गया था। वहाँ कुछ दोस्तों के चक्कर में मैंने और फिर मैं गाँव वापस आ गया।
विनोद,
अब ये सब कुछ जानने के बाद तुम मेरे लिए जो भी फैसला करोगी मुझे मंजूर होगा।
विनोद, अगर ये बात मुझे किसी और से पता चलती शायद मैं तुमसे सचमुच नफरत करती, लेकिन तुमने अपने बारे में खुद सच बताने की हिम्मत की है। और सच बताऊं, ये देखकर मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार कम नहीं हुआ और बढ़ गया है। आई लव यू विनोद, आई लव यू।
आई लव यू रबीता, आई लव यू।
मोहित, मोहित।
हाँ क्या हुआ?
मोहित, अभी कहाँ जाने का इरादा है?
कहीं नहीं यार, घर जाना है।
लेकिन आज तो स्कूल के बाद सब दोस्तों का क्रिकेट मैच खेलने का प्लान था।
नहीं यार सुरेंद्र, मुझे घर जाकर पढ़ाई करनी है।
ठीक है, तेरी मर्जी, मैं चलता हूँ।
ठीक है।
मोहित।
राजन सर, कुछ काम था सर आपको?
नहीं, वो बस तुमको धन्यवाद बोलना था।
धन्यवाद? वो किसने सर, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया।
हाँ मोहित, लेकिन अगर तुम उस दिन मुझे मेरी पत्नी के बारे में बताने ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता।
सर, मेरी जगह गांव का कोई भी बच्चा होता तो वो भी यही करता जो उस दिन मैंने किया।
और बताओ, इस बार तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है?
कोशिश कर रहा हूँ सर, और आप ही ने तो सिखाया है, कोशिश कभी बेकार नहीं जाती।
और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अपनी स्कॉलरशिप फिर से जरूर हासिल कर लोगे।
थैंक यू सर।
हाँ हाँ ठीक है, अब तुम जाओ।
जी सर।
अपना ख्याल रखना और घर की खबर भेजते रहना। तुम्हारा दोस्त सूरज। चिट्ठी तो हो गई, अब इसे, हाँ इसे भी दवाइयों के इसी डब्बे में रख देता हूँ, अब ठीक है। चल भाई सूरज, अब इसे भेजने के लिए डाक घर चल। चल खड़ा हो जा।
छोटे आसे अनार, बड़े आसे आम, छोटी इसे इमली, बड़ी इसे ईक।
अरे राधा बेटा, पढ़ाई हो रही है? हाँ
देखो पिताजी, मुझे स्कूल से नई नई किताबें मिली हैं।
अरे वाह वाह।
राधा, ये भी राधा।
पिताजी, दादी आ रही है, वो मुझे आपके पास से फिर ले जाएगी।
अरे तू यहाँ बैठी है, ये ले खानू खेले।
मुझे नहीं खाना।
खा ले बेटा।
नहीं, मुझे नहीं खाना।
अच्छा, तो ये बता, अपने पिताजी के हाथ से भी नहीं खाएगी?
माँ, ये तुम।
अरे बेटा, स्कूल से आने के बाद इसने कुछ भी नहीं खाया। ले चल, तू ही इसे खिला दे।
मैं खिला दूंगा माँ।
खिला देना। हाँ
हाँ हाँ माँ। हाँ राधा, बेटा मेरे हाथ से खाना खाएगी ना?
हाँ, आपके हाथ से खाऊंगी।
शाबाश बेटा। मुखल मुखल आकर चले बेटा, खा बेटा। हाँ, और ले बेटा, चल खा बेटा।
अकेले हम, अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान।
ओह, आई लव यू डैडी।
तू मासूम।
तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारा रेडियो धारावाहिक जीवन की राह, और अब बात उन विचारों की जिन्हें हम हर सप्ताह जानने की कोशिश करते हैं,
और वो विचार होते हैं आपके।
दोस्तों, अगर आपके गांव में किसी HIV पॉजिटिव व्यक्ति के साथ भेदभाव हो रहा है, उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ऐसे में कौन उसकी सही मदद कर सकता है?
आइए सुनते हैं क्या विचार रखते हैं हमारे श्रोता इस बारे में।
सबसे पहले उसके परिवार वालों को और फिर गांव के सम्मानित व्यक्तियों जैसे प्रधान, सरपंच, महिला मंगल दल की सहायता महत्वपूर्ण है, जिससे HIV के रोगी को राहत मिल सके और उसके साथ भेदभाव न हो।
व्यक्ति के प्रति भेदभाव होता है तो उसे सबसे पहले गांव के सरपंच, महिला मंगल दल या अपने नजदीकी NGO की सहायता लेनी चाहिए।
उस व्यक्ति के साथ सरपंच या महिला मंगल दल, NGO, सभी लोगों की सहायता होनी जरूरी है ताकि उसके साथ भेदभाव मिट सके।
मेरे दृष्टिकोण से जो है, उसे जो है गांव के सर्वोपरि व्यक्ति से ही सहायता लेनी चाहिए। उनसे अपनी बात रखनी चाहिए कि मेरे साथ इस प्रकार का भेदभाव हो रहा है, इस प्रकार की जाति लोग कर रहे हैं, ताकि वो सर्वोपरि व्यक्ति उन लोगों को समझा सके कि HIV जो है कोई फैलने वाली बीमारी नहीं है, कोई संक्रामक बीमारी नहीं है। सबसे पहले उसे जो है सहायता, जो गांव के सर्वमान्य व्यक्ति हैं, ग्राम प्रधान हो गया या महिला मंगल दल हो गया, कोई भी समूह हो जिसको जो है गांव मानता हो, उस व्यक्ति से उसको सहायता लेनी चाहिए।
तो दोस्तों, ये थी हमारे श्रोताओं की राय।
और दोस्तों, जैसा कि अब घड़ी कर रही है इशारा, यानी कि समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले हम धन्यवाद करना चाहेंगे
अपने सामूहिक संवाददाताओं को, जिन्होंने हमारे श्रोताओं के विचारों को जानने का प्रयास किया।
साथ ही हम धन्यवाद करते हैं सामुदायिक रेडियो हैवलवानी और मंदाकिनी की आवाज़ को, जो इस कार्यक्रम को पहाड़ों में बसे हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
और इसके अलावा हम आभारी हैं अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन का भी, जिनके वित्तीय सहयोग से IdeoSync मीडिया कंबाइन द्वारा ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। और दोस्तों, अब मुझे और प्रेमा को दीजिए इजाज़त। हमारी और आपकी अगले हफ्ते इस समय फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।